आज की इस डीप डाइव में हमारी सोर्सेज मतलब आज जो मटेरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ चैप्टर पर बेस्ड है।
हाँ, और हमारा मिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम ये समझने वाले हैं कि इस इतनी बड़ी गोल दुनिया में किसी भी जगह को आखिर ढूंढा कैसे जाता है।
बिल्कुल, और ये सफर हमने छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया है, तो हम मैप्स, ग्लोब्स और अर्थ के कुछ मजेदार सीक्रेट्स को सिंपल स्टोरीज के जरिए एक्सप्लोर करेंगे।
एकदम सही कहा आपने। और एक बहुत ही पुराने और इंटरेस्टिंग बात से शुरुआत करते हैं।
अरे हाँ, उस एंशिएंट डिस्कवरी के बारे में।
हाँ, एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट।
उन्होंने लगभग 500 CE में ही बता दिया था ना कि अर्थ का ग्लोब स्पेस में है।
एग्जैक्टली, उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि ये स्फेरिकल है, मतलब गोल शेप का है, और स्पेस में सस्पेंडेड है। और उनका मानना था कि ये वाटर, अर्थ, फायर और एयर से मिलकर बना है।
सोचिए, 500 CE मतलब आज से लगभग 1500 साल पहले, बिना किसी सैटेलाइट के इतनी एग्जैक्ट बात बोलना।
वही तो मैजिक है। और जब हम आज अर्थ पर प्लेसेस लोकेट करने की बात करते हैं
तो हमें सबसे पहले डायरेक्शंस और डिस्टेंसेस समझने पड़ते हैं।
सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैप और स्केल की।
इमेजिन करो एक नए शहर में आना। रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल या बैंक तक का रास्ता कैसे मिलेगा?
यहाँ काम आता है मैप। मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह है जो रास्ता दिखाता है।
पर एक छोटा सा सवाल है मेरे पास।
पूछिए।
इतनी बड़ी दुनिया एक छोटे से पेपर पर आखिर कैसे फिट हो जाती है?
इसका मैजिक ट्रिक है स्केल।
स्केल मतलब जैसे ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल?
नाम वही है पर यहाँ काम थोड़ा बड़ा है। अगर रियल लाइफ में 500 मीटर्स की दूरी है,
हाँ,
तो मैप पर उसे सिर्फ 1 सेंटीमीटर से दिखाया जा सकता है।
ओह, इसका मतलब मैप पर लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 500 मीटर्स।
एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक रियल कार को देखकर टॉय कार बनाना। प्रोपोर्शंस वही रहते हैं, बस साइज छोटा हो जाता है
ताकि जेब में फिट आ सके। स्केल के कारण ही मैप पर डिस्टेंस मेजर करना आसान हो जाता है।
सही। तो यहाँ एक मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला है।
हाँ,
रिमेम्बर दिस, स्केल हमें बताता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर रियल ग्राउंड पर कितने मीटर्स या किलोमीटर्स के बराबर है।
परफेक्ट। अब मैप पर डिस्टेंस तो पता चल गया, लेकिन रास्ता ढूंढने के लिए डायरेक्शंस भी तो पता होनी चाहिए ना?
बिल्कुल। मैप के कॉर्नर में हमेशा एक एरो होता है जिस पर एन लिखा होता है।
और एन का मतलब है
नॉर्थ डायरेक्शन।
हाँ, और अगर नॉर्थ ऊपर है तो नीचे क्या होगा? साउथ। राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है।
और इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं जैसे
साउथ ईस्ट,
नॉर्थ वेस्ट
और साउथ वेस्ट।
सही। अब एक और प्रॉब्लम आती है मैप बनाते वक्त।
क्या?
मैप्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ड्रॉ करना पॉसिबल थोड़ी है, स्पेस ही नहीं होता।
अरे हाँ, इसलिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। ये मैप की एक तरह से सीक्रेट कोड लैंग्वेज है।
सीक्रेट कोड लैंग्वेज, सही वर्ड यूज किया। जैसे ट्रीज और ग्रास के लिए
छोटे हरे पेड़ ड्रॉ करना,
और पोस्ट ऑफिस दिखाना हो तो
सिर्फ PO लिख देना।
एग्जैक्टली, रेलवे ट्रैक, रिवर और ब्रिजेस के लिए अलग अलग सिंपल ड्रॉइंग्स यूज की जाती हैं।
क्योंकि मैप पर स्पेस कम होता है इसलिए सिंबल्स का यूज होता है ताकि सब कुछ क्लीनली दिखाई दे, क्लटर ना हो।
सही बात। तो इस सेक्शन से हमें क्या याद रखना है?
रिमेम्बर दिस, मैप पर एन एरो हमेशा नॉर्थ बताता है, और सिंबल्स मैप की एक सीक्रेट लैंग्वेज है जो बड़ी चीजों को छोटे डिजाइन में दिखाते हैं।
अब थोड़ा और डीप चलते हैं। फ्लैट मैप तो ठीक है, लेकिन हमारी अर्थ स्फेरिकल है,
गोल है, इसलिए अर्थ का बेस्ट मॉडल एक फ्लैट पेपर नहीं, एक ग्लोब है।
ग्लोब पर ऐसी कई इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो प्लेसेस को लोकेट करने में मदद करती हैं।
जैसे ग्लोब पर कुछ स्लीपिंग लाइंस होती हैं, मतलब लेटी हुई लाइंस।
हाँ, उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और इनमें जो सबसे लंबी और बिल्कुल सेंटर वाली लाइन होती है
यूजे इक्वेटर कहते हैं।
सही पकड़ा। इक्वेटर अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है,
ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर।
ये तो हो गई स्लीपिंग लाइंस। अब थोड़ा स्टैंडिंग लाइंस के बारे में सोचते हैं, खड़ी लाइंस
जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं।
हाँ, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये आधी गोल होती हैं, मतलब हाफ सर्कल्स।
और जब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं तो एक जाल सा बन जाता है ना?
उसी जाल को ग्रिड कहते हैं। इसकी मदद से दुनिया में किसी भी जगह को पिन पॉइंट किया जा सकता है।
जैसे किसी बिल्डिंग का एड्रेस होता है, अगर दिल्ली ढूंढना हो
तो ग्रिड पर देखेंगे। दिल्ली का एड्रेस है 29 डिग्री एन लैटिट्यूड और 77 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड.
वाओ, इतना एग्जैक्ट. तो हमें याद रखना चाहिए, रिमेंबर दिस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस मिलकर एक ग्रिड बनाती हैं, जो दुनिया में किसी भी जगह का एग्जैक्ट एड्रेस ढूंढने में मदद करती हैं.
बिल्कुल सही. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाता हूँ.
बताइए.
जैसे इक्वेटर अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांटती है, वैसे ही एक मेन स्टैंडिंग लाइन भी होनी चाहिए ना, जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में बांटे.
हाँ, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं.
हाँ, आज के टाइम में सबसे फेमस लाइन है ग्रीनिच मेरिडियन. ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो लंदन के पास से गुजरती है.
ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है.
लेकिन यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग हिस्ट्री का फैक्ट है. यूरोप से कई सदियों पहले,
अच्छा,
एंशियंट इंडिया की अपनी एक प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी. इसे मध्य रेखा कहा जाता था. मध्य मतलब मिडल.
ओह, ये मध्य रेखा कहाँ थी?
ये इंडिया की फेमस सिटी उज्जैनी से होकर गुजरती थी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं.
उज्जैन, वहाँ एस्ट्रोनॉमी मतलब तारों की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा सेंटर था ना?
एकदम सही. वहाँ एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वराह मेहरा, जो लगभग 1500 साल पहले वहाँ रहते थे.
ये तो सच में बहुत प्राउड की बात है. तो ये जरूर याद रखना चाहिए, रिमेम्बर दिस, लगभग 1500 साल पहले एंशियंट इंडिया के पास अपनी प्राइम मेरिडियन थी, जो उज्जैनी यानी उज्जैन से गुजरती थी.
बिल्कुल. अब मैप और ग्लोब से आगे बढ़ते हैं और एक टाइम ट्रैवल मैजिक सीखते हैं.
टाइम ट्रैवल ज्योग्राफी में?
हाँ, सोचिए, एक ही वक्त पर असम में शाम को अंधेरा हो जाता है,
लेकिन गुजरात के पोरबंदर में अभी भी दिन की रोशनी होती है. ऐसा क्यों?
क्योंकि अर्थ घूमती है, स्पिन करती है.
तो जो हिस्सा सन की तरफ होता है वहाँ दिन होता है, और उसके पीछे वाले हिस्से में रात हो जाती है.
एग्जैक्टली. और अर्थ के इस स्पिन करने की वजह से ही लॉन्गिट्यूड लाइन से हमें लोकल टाइम और टाइम जोन्स का पता चलता है.
इसका मतलब अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर टाइम अलग होता है.
हाँ, और इसमें दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग लाइन की बात करना तो बनता है, इंटरनेशनल डेट लाइन.
इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कहाँ है?
ये लाइन लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरती है.
तो इसमें मैजिक क्या है?
इसका द मैजिक रूल सुनिए. अगर कोई शिप या एरोप्लेन इस लाइन को ईस्ट की तरफ क्रॉस करता है, तो एक दिन कम हो जाता है. सबट्रैक्ट अ डे.
मतलब मैं मंडे को क्रॉस करूं तो वापस संडे में पहुंच जाऊंगी, एक एक्स्ट्रा छुट्टी.
हाँ, टेक्निकल टर्म्स में. हाँ, और अगर वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, एड अ डे,
संडे से डायरेक्ट मंडे.
पर एक बात सोचिए, अगर ये लाइन किसी कंट्री के बीच से निकल गई तो?
वही तो कैच है, एक ही कंट्री के आधे हिस्से में संडे और आधे में मंडे हो जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा.
इसीलिए ये लाइन बिल्कुल सीधी मतलब स्ट्रेट नहीं है ना?
सही पकड़ा. इसे कुछ जगहों पर टेढ़ा किया गया है, जिगजैग बनाया गया है ओशन के ऊपर से निकलते हुए, ताकि एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग डेट्स ना हो जाए. ये तो बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है. सो रिमेम्बर दिस, इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है. इसे क्रॉस करने से कैलेंडर की डेट बदल जाती है, और इसीलिए ये लाइन थोड़ी जिगजैग है.
परफेक्टली समराइज्ड.
तो इस मजेदार सफर में हमने काफी कुछ देखा और सीखा.
हाँ, बहुत कुछ. मैप पर डिस्टेंसेस को छोटा करने वाला स्केल हमने देखा,
डायरेक्शंस और सिंबल्स की सीक्रेट कोड लैंग्वेज को भी डिकोड किया,
फिर हमने ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ग्रिड समझी,
और ये भी देखा कि कैसे एंशियंट इंडिया में उज्जैनी एक प्राइम मेरिडियन था,
और एंड में टाइम जोन्स और इंटरनेशनल डेट लाइन का टाइम ट्रैवल मैजिक.
सच में दुनिया को नापना कोई छोटा काम नहीं है. अब एंड में एक मजेदार सवाल पर सोचते हैं.
जरूर, क्या सवाल है?
अगर किसी दिन इंसान किसी ऐसे नए प्लैनेट पर रहने जाए, किसी एक्सोप्लैनेट पर, जहां अर्थ की तरह कोई नॉर्थ या साउथ पोल हो ही ना,
और वो प्लैनेट अन स्पिन ही ना करता हो,
हाँ, तो वहां के लोग अपना पहला मैप और डायरेक्शंस कैसे बनाएंगे?
ये तो सच में बहुत डीपली सोचने वाली बात है.
वहां का इक्वेटर या प्राइम मेरिडियन क्या होगा, ये कल्पना करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा.
मैप्स बनाने के नए रूल्स लिखने पड़ेंगे उस प्लैनेट के लिए.
बिल्कुल. तो इस थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के साथ आज का सफर हम यहीं रोकते हैं. दुनिया और स्पेस में प्लेसेस को लोकेट करने का ये कॉन्सेप्ट कितना वास्ट और मैजिकल है. ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लोरेशंस के लिए जुड़ते रहिए.